अभी हम शुरू करते हैं आज का सेशन. आज का सेशन है मूल्यों एवं आध्यात्मिकता का रोल क्या है एजुकेशन में. क्या वास्तव में एजुकेशन में मूल्य एवं आध्यात्मिकता आवश्यक है. तो अभी हम आमंत्रित करते हैं आज के अपने मेहमानों को, गेस्ट को. आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए. आज हमारे साथ में हैं प्रोफेसर डॉक्टर नामदेव कल्याणकर सर. आप वाइस चांसलर गोंडवाना यूनिवर्सिटी के हैं. साथ साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा जी को. आप प्रो वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं. हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय बीके सुदेश बहन जी को, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग ब्रह्म कुमारी न्यू दिल्ली से हैं. साथ साथ हम आमंत्रित करेंगे मिस सगुना किरण. आप एक कंसल्टेंट ट्रेनर हैं वाइटल इंडिया प्रोजेक्ट में चेन्नई से. आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमारे पास आदरणीय विजडम से भरपूर माननीय मंच. मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं सबसे पहले डॉक्टर नामदेव कल्याणकर सर को. आप वाइस चांसलर हैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी से. आपने दो पुस्तकें भी लिखी हैं. 5 से ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है. 500 से ज्यादा आपके रिसर्च स्कॉलर्स रहे हैं. कई यूरोप और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. साथ साथ हम ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारे मेहमानों का पुष्पों के द्वारा और बैज के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें. प्रोफेसर चिंतामणि सर, सगुना किरण मैम, प्रोफेसर नामदेव कल्याणकर सर, आदरणीय सुदेश बहन. हाँ, मैं बात कर रहा था प्रोफेसर नामदेव कल्याणकर सर के बारे में. आप वाइस चांसलर गोंडवाना यूनिवर्सिटी के हैं. आपने उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में एजुकेशन को लेकर भ्रमण किया है. आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से ख्याति प्राप्त हैं. आप बहुत सारी गवर्नमेंट की कमेटीज में चेयरपर्सन हैं, कमेटी में मेंबर हैं. ऐसे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ साथ आप बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त हुए. साथ में हमारे बीच में है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियों के गड़गड़ाह के साथ में हम प्रोफेसर नामदेव सर का अभिनंदन करते हैं. हमारे बीच में साथ में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र सर. आप प्रो वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रहे हैं. साथ में हमारे बीच में हैं सुदेश बहन, आदरणीय सुदेश बहन. हमारे पास लगभग 42 सालों से राजयोग की साधना और अभ्यास आप कर रहे हैं और 1996 से आप समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग की और साथ साथ पालम विहार सेंटर की को डायरेक्टर हैं दिल्ली में. आपको 3 बार बेस्ट टीचर अवार्ड मिला 1991 में. दूसरी बार आपको 2001 में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला और तीसरी बार 2002 में आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला. आप सात्विक रसोई के नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलाती हैं. आपने सात्विक रसोई के नाम से बुक लिखी है. उस पर आपके वीडियोज भी बहुत सारे आते हैं. आप लोग यूट्यूब पे भी वो सात्विक रसोई के वीडियो देख सकते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल और दूसरे चैनल्स पे भी आते हैं। हमारे बीच में हैं सगुना किरण मैम, आप कंसल्टेंट ट्रेनर हैं वाइटल इंडिया चेन्नई प्रोजेक्ट के अंदर। सगुना मैम के बारे में एक और विशेष बात कहेंगे कि आप वैल्यू एजुकेशन फील्ड से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं। आप पहले बैंकर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट भी रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। वैल्यू एजुकेशन की ट्रेनिंग लगभग 15 सालों से आप दे रहे हैं और वैल्यू बेस्ड मोटिवेशनल प्रोग्राम कई स्कूल्स और कॉलेज और कॉरपोरेट लेवल्स पे आप चला रहे हैं। आप क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे कई देशों में आपने इन्हीं चीजों को लेकर अपने व्याख्यान दिए हैं। करंटली आप वाइटल नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स कवर कर रहे हैं केरला स्टेट में, और टीचर्स ट्रेनिंग मेंटरिंग के बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम भी आप चला रहे हैं। एजुकेशन, म्यूजिक, डांसिंग एंड स्पिरिचुअलिटी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो आते हैं हम एक बार वापस अपने फील्ड में। हमारा आज का जो विषय है, रोल ऑफ वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर मूल्यों का और अध्यात्म का क्या महत्व। अब सबसे बड़ी बात आती है, मूल्यों की कीमत या कीमती मूल्य क्या है। इस चीज से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम नामदेव सर से, सर आप थोड़ा इस सर नामदेव सर आप इस इशू को, इस विषय को थोड़ा क्लियर करके, स्पष्ट करके हमारे सामने रखेंगे।
ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर में मैं आपका सबका यहां स्वागत करता हूं। बड़ा इम्पॉर्टेंट और एजुकेशन सिस्टम के सामने चैलेंजेबल सवाल है, बिकॉज वी आर वर्ल्ड्स थर्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वी आर एट क्रॉस रोड इन द हायर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ, बिकॉज we have shifted from non-formal education to formal education in recent times. We have a very glorious history of education culture as well as the societal values which were there, and we were the leaders for rest of the world through non-formal education, which was given in the society right from our parents, society, Gurukul system, and later on some organizations made through the that time leaders of the society like Takshashila and Nalanda. But in the middle age, our history of education, our culture of education, values in the education we have lost somewhere. And with the passage of time, with the Western countries to lead in the education, formal system of education has come up, and now in the entire world we are in the formal system of education, wherein education is treated as a means for profession. It is a tool for our life, and it has brought certain good things along with some problems to face. Now education is treated as a business all over the world, and students people of the society are treated as customers. So naturally, all the things which are there for running a business are brought into practice by all players of this system. And now we are facing so many problems of number as well as unhealthy competition among the institutes, among the individuals, among the organizations. And from last few years we are speaking about the value education and spirituality. From last 2 days, I am here as one of the part of the devotees, as like you, and we have listened few lectures on value education from yesterday. We are also going to listen to today and tomorrow also. Now value means what? It is an object or it is a concept that you have come across. In my view, it is a psychological object. It can be a mission of a person, mission of an organization, mission of a country. It may be a commitment of an organization, commitment of an individual. Now, how and for what it is carried out, that is very meaningful. We come across number of entities in achieving a mission, maybe of an individual, maybe of an organization, maybe of a country. To deal with many entities coming across, it depends upon the person who is dealing with and what for he is dealing with. If your object is clear, it is for welfare, it is for welfare of the human or mankind, then it has a value. I think in the education it has a tremendous importance. In the informal system there was a respect to the teachers, to the system, and honesty was the base. Now in modern system, in the education system, which is a formal one, it has a dimensions of achieving certain things, gaining certain things, maybe for individual, maybe for organization. I think the values embodied in the mission of the person, in the mission of the organization, are very important. I want to cite you a very simple example. In the formal system of education, if 2 boys are studying right from beginning, from their childhood, completing graduation and post-graduation from the same institution, their personality differs. It is likely that one become a social leader, working for the society, working for others, doing welfare activities, and other who has got the education from the same system is creating nuisance to all the systems and working for himself, becoming greedy. It means that in the same system the product differs. It means that the values that we have put forth are not received similarly by 2 entities, 2 persons. So, how the values are deliberated, how they are embedded, and how they are transferred, they are also important. similar is the thing regarding if we are in a mission mode, with what spirit we are doing it, whether it is having a selfish motto or it is for the society. In the education system, both values and spirituality carry a very great role. It is regarding not only achieving the skill, not achieving certain expertise, but it is regarding to build a person who is useful for the society, who is helping to the society. I think the motto of the education system should be to develop, to create a person who is useful for the society, a good citizen. And for that, values in the education play a very important role. I think the subject is open. Different, my colleague panelists will open up with different views, and then we have a cross discussion regarding this.
Great, sir.
थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू सर, आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सामने रखा. हम इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ में हैं चिंतामणि महापात्र सर. सर, इस सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा हमें खोल के और अपने एक्सपीरियंस से, कि आपने वैल्यू एजुकेशन की अपनी जो यात्रा रही, उस यात्रा के बारे में भी साथ में हमें बताएं सर.
नमस्कार, सुप्रभात. लेट मी एट द आउटसेट express my delight to be part of this great exercise. I have been reading and watching Brahma Kumari's activities and their sermons and their pravachans for a long, long time. And it has been now an experiential thing for me since yesterday when I meet them personally and listen to them. And the topic is value and spirituality. One can go on and on this topic. But in my initial remarks, I'll just make some disjointed points. And then during Q&A, maybe we can express things better from our own experience over the decades. Number one, when people in this part of the world were writing their Vedas and Upanishads and Puranas, by and large, there were monkeys around the world. Education has a long, long history. Knowledge, philosophy, wisdom, long history in India compared to many other parts of the world. No doubt about it, there are other great civilizations. They had their own education system. And some of us don't even know what their education system is all about. But recently, when I was in China, somebody asked me a question, said, in China now, we have a big project on asking our educationists to delve deep into the Chinese history and look for the Chinese ideas on very many topics, including world order, Asian order. Are you doing similar thing in India? I said, there are people in India in a very scattered fashion doing this kind of work, but this is not part of mainstream education system in India. And in fact, if anybody in the classroom would even give an example of Mahabharata Ramayana, somebody would say, ye RSS ka banda hoga. Why is this? About 1,000 years of foreign rule, the Indian mind has been so deeply colonized. Even today the Indian mind is colonized. That Indians are not proud of their own past, they are not proud of their own achievements. If the Russians would do a piece of research on the war strategy of Mahabharata, are you gora aadmi kar raha hai? Pakka, kuch to hoga Mahabharata mein. In order to appreciate our own thing, own discovery, we need a white man to give you endorsement. That is the state of things in India. कितना डिबेट चला whether sun is rising in the east and setting in the west or पृथ्वी घूम रहा है चला for hundreds of years. Finally Galileo बोला नहीं, it is the earth which is moving. If I give you an example that in Upanishad, somebody said Stita Surya Gata Prithvi, अरे ये RSS का बंदा होगा अपना आइडियोलॉजी लेके चल रहा है. This has been the state of affairs in India even now. Why is this? I understand that before these foreign invasions, even there, the education system was not democratically exercised. It was the privy of the elite. Rajas, Maharajas and the elite who were serving them, their children were getting good education and not the masses. Wahan bhi problem tha. But India became independent in 1947. This is 2017. Even then we have this problem. And why? Why? Because the birth of modern India was very painful. All of you know very well. This is a country where there were 100 plus languages, 400 plus or maybe 800 plus dialects. So many languages is part of the constitution of the national languages. You have all kinds of caste differences. Not just caste, sub-caste, sub-sub-caste, sub-sub-sub-caste. And discrimination does not take place between the upper caste and the lower caste. At every level you have intense discrimination, partly because of ignorance, and partly because of the way society has evolved. But discrimination is there. And secondly, when the people who wanted Pakistan ultimately stayed back in India, large number, and that is because we believed in secularism. Now, the moment you say religion, Hinduism, then there is a fear among the minority groups. And there are so many religious minorities in India. This dominant Hindu religion will actually lead to our extinction. Fear to hai. And because of this peculiar situation of birth of new India, where you have so many languages, so many religious differences, caste differences, linguistic differences, so many things, probably those who wrote books, particularly in social science, more specifically in history, they kept in mind how to keep India united. And if you read the history books, if the historians would actually make a good review, a balanced review of Indian history books which are prescribed in the schools, and the teacher will teach the same thing in the classroom, the history is different. Pure sansar mein samasya ka ek jad hai itihas. A country that doesn't understand its history can never grow. That is true. But unless the history is written in a way which is going to help the country get united and grow, there will be problem. You go to China and read about World War II and what they think about the Japanese. जब एंटी जापानीज मूवमेंट चल रहा था चाइना में, शेंकाकू आइलैंड को लेके मैं वहां खुद था, और एक उनका जो आंदोलन है वहां जाके पहुंच गया देखने के लिए कि कैसे होता है. इंडिया में तो बहुत होता है, जेएनयू में और बहुत होता है. मैंने पूछा एक आदमी को, भाई आप क्यों हो इधर? वी आर अगेंस्ट जापान. बट व्हाई? दैट आई डोंट नो. इट्स बिकॉज ऑफ हिस्ट्री. पाकिस्तान में वही हाल है. पाकिस्तान का हिस्ट्री बुक देखेंगे तो बच्चा जब पैदा होता है स्कूल जाता है, स्कूल से पास करता है, डीप इन हिज माइंड एंड द हार्ट ही थिंक्स द इंडियंस आर देयर दुश्मन नंबर वन. इट इज देयर. सिमिलर स्टोरी यू कैन सी इन यूरोप एंड एल्सवेयर आल्सो. तो मैं क्यों बता रहा हूं ये इसीलिए बता रहा हूं कि अभी जो डिस्कशन है वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिटी, ये वैल्यू का भी अलग अलग मीनिंग होता है. एक तो है इकोनॉमिक वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है. दूसरा होता है कल्चरल वैल्यू, फैमिली एंड सोशल वैल्यू, देन ऑफ कोर्स रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. एट द मोमेंट पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सा किस्म का समुद्र मंथन हो रहा है. where information, misinformation, disinformation of all kinds are being thrown around through WhatsApp and internet and emails. In the process, people around the world, even in India, are getting confused. Oh, confusion se jyada conflict paida ho raha hai. Those who are observing, they understand that if we are passing through a very, very difficult transition. Agar aap apne aap ko ek parent ki haisiyat se dekhenge to wahi payenge. As a teacher, I see the same thing. As an education administration, I find the same thing. To iska solution to nikalna hai na. Us solution ke liye, role of value and spirituality is in education are inevitable. Ye agar na karein, to samasya aur gambhir ho jayega. To bhi, it is very easy for me, ek line mein bol dunga, to the role of value and spirituality to bahut important hai, kaam khatam ho gaya, debate ka. Yahan khatam nahi hota. Yahan chunauti aati hai, challenges. And what are the challenges? When we are trying to introduce values into our education system, pehle to ye tay kare kaun sa values. Because all of you know very well, 5 Indians can have 9 opinions on any topic. Hum bolte bhi jyada hain, sochte bhi jyada hain, aur alag alag hisab se sochte hain. It is important for all of us to think alike and through those differences and debate, find out certain common standards or values that must be inculcated into the mind of the children and then subsequently in the colleges and the universities and even among the politicians and bureaucrats and even staff and officers for good of India, for the good of world. So that is challenge number one. Number two, what is spiritualism? Is it the same as religion? Are they related? Can they exist can they exist without each other? These are the questions that we should deeply think. Kal se main sun raha hu so many things. So the moment we talk about spiritualism, wahan Allah bhi aaye hain, Jesus bhi aaye hain, aur Krishna bhi aaye hain, Ram bhi aaye hain. So can we remove all those great men from religion? We cannot. And the moment you utter one name, dusra aadmi bolega uska naam bhi dalo, uska naam bhi dalo. So can we separate religion and introduce something called spirituality in education? Sochiye. This is food for thought. Maybe you can come up with good ideas and say yes, it is possible. These are the ways. Wo hame karna hai, abhi karna hai. To start with. तीसरी बात यह है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट रियली टच्ड मी वॉज द लेक्चर दिस मॉर्निंग. फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड पीस का एकमात्र सोल्यूशन है जो आज हमने सुना सुबह. कितना बढ़िया रिसर्च करके उन्होंने दिखा दिया, इतना बढ़िया रिसर्च करके दिखा दिया कि चीज तो एक ही है. आप किसी भी ढंग से देखिए, किसी भी इलाके से देखिए, किसी भी धर्म के हिसाब से देखिए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति. मगर अगर एक हिंदू बोलेगा कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति और कृष्ण हमारा भगवान है, मुसलमान बोलेगा नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति पर अल्लाह सबका भगवान है. समस्या वही आती है जब मैं सोचता हूं कि मेरा सोच ही करेक्ट है. जो आप सोचते हो, मैं ये सोचता हूं कि आप गलत हो. मैं ये नहीं सोच पाता कि ये मेरा सोच है, ये मेरा भगवान है, वो तेरा सोच है, वो तेरा भगवान है, चलो साथ साथ रहें भाई. जब ये साथ साथ रहें, चले साथ साथ, शुरू हो जाएगा विश्व शांति का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन. इससे और कुछ हो ही नहीं सकता. हर एक रिलीजन में यही बोलता है कि भगवान एक है और सारे के सारे जितने भी ह्यूमैनिटी है भगवान का बच्चे हैं. तो फिर एक मुसलमान क्यों नहीं मानेगा कि क्रिश्चियन भी वही भगवान का ही बच्चा है? बट मानता नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दुनिया में हम जैसे लोग भी हैं, आके ऐसे सारे बात कर रहे हैं, और अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनका एजेंडा अलग है, उनका प्लान अलग है, उनका गोल अलग है. इन द प्रोसेस द वॉर विल बी ऑन. सोच लीजिए, युद्ध चल रहा है, चलता रहेगा. जो युद्ध हमारे दिमाग में चल रहा है हमेशा, महाभारत वॉर इन ह्यूमन माइंड ऑल द टाइम गोइंग ऑन. एंड द डिफरेंसेस बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड. दिल कुछ चाहता है, दिमाग और कुछ सोचता है. बस सोसाइटी को जब एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, सोसाइटी में वही हो रहा है. इसीलिए हमें तैयार रहना है. एजुकेशन, सॉरी, आपका स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज को ऐसा ढंग से लाएं जो कि सबके लिए अच्छा हो. कैसे लाएं? क्वेश्चन आंसर में मैं अपना मत रख सकता हूं, बट फिलहाल दीज आर माई फंडामेंटल बेसिक ओपन इनिशियल ऑब्जर्वेशन, फूड फॉर थॉट. थैंक यू फॉर योर अटेंशन.
बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय को ओपन किया. हमारे साथ बीच में प्रोफेसर पंकज एल जानी सर भी हैं. आप वाइस चांसलर हैं बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के. मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं. आपको जाना था लेकिन आप भी विशेष इसी प्रोग्राम के लिए रुके हैं, और साथ साथ में ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आपको भी बुके और बैज के द्वारा सम्मानित करें. एक बहुत सुंदर बात आती है कि हमें मूल्यों की आवश्यकता है, हमें अध्यात्म की आवश्यकता है. अब बात उठती है कि क्या मूल्य और अध्यात्म अलग अलग हैं, और यदि अलग हैं, मूल्यों को बिना अध्यात्म वाला व्यक्ति कोई पढ़ा नहीं सकता क्या? क्या टीचिंग के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है? और यदि हम पढ़ाएं मूल्यों को तो व्हाट शुड बी द टीचिंग टेक्नोलॉजीज, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या हो? क्या कोई स्टोरीज के थ्रू पढ़ाएं? क्या कोई चॉक एंड टॉक डस्टर लेकर के कुछ वैसे पढ़ाएं? क्या कोई वीडियोज के थ्रू पढ़ाएं? कहते हैं कि एक लाइफ स्किल्स जीवन से सिखाएं अपना. तो अब ये बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें हैं. जीवन से सिखाएं, चॉक टॉक से सिखाएं, वीडियो से सिखाएं, तो मल्टीमीडिया सिस्टम्स को लेकर के सिखाएं, और सिखाएं तो साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के बिना सिखाएं या स्पिरिचुअलिटी भी सिखाएं, और फिर इतने सारे देश के अंदर टीचर, इतने सारे कॉलेजेस में स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस करें. तो मैं सुदेश बहन जी से अनुरोध करूंगा कि एक थोड़ा हमें इस बात पे प्रकाश डालें कि क्या मूल्यों को सिखाने के लिए बिना स्पिरिचुअलिटी संभव है क्या?
ओम शांति. मुकेश भाई ने प्रश्न किया कि मूल्यों को सिखाने के लिए अध्यात्म को हमें धारण करना आवश्यक है या नहीं. बहुत पुरानी इंस्टांस आप सभी सुनते ही आए हैं कि गुरुजी ने कहा गुड़ नहीं खाना, वो भी काफी दिनों के बाद उसको बुलाया और कहा कि अब मैं तुझको कहता हूँ गुड़ नहीं खाना. और उससे पहले शिष्य ने कहा पहले क्यों नहीं कहा, कहते पहले मैं भी खाता था. तो मैं समझती हूँ इसके अंदर ही हमारा काफी जवाब आ जाता है कि जब तक हमारे मन में शांति नहीं है तो हम स्टूडेंट्स को कैसे शांत कर सकते हैं. कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और लेक्चरर्स के मन में ही शांति नहीं है, और प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम अपनी लाइफ में ही, फैमिली लाइफ में ही सेटिस्फाइड नहीं है और अपने आप को नहीं शांत कर पाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तो हमारा हक नहीं बनता है स्टूडेंट्स को कहने का कि आप पीसफुल रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, लेट गो कर दें. क्योंकि हमारी बातों का असर तभी होगा जब हमारे अंदर यह सब चीजें होंगी. तो हमको पहले अध्यात्म को अपने जीवन में लाना होगा. इसके लिए, मूल्यों की धारणा के लिए आप गहराई से सोचेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि वास्तव में मूल्यों की धारणा हम सभी चाहते हैं. किसको नहीं मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसको नहीं मालूम है कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसको नहीं मालूम है हम सबको आपस में कोऑपरेटिव होकर रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए. लेकिन फिर भी कर पाते हैं आप? कितने कर पाते हैं? जिनके जीवन में बचपन से मूल्य धारण हुए हैं वही कर पाते हैं ना. तो हमारे अंदर मूल्य की धारणा होती है अध्यात्म से, अध्यात्म से होती है। हमारे जीवन में जब तक अध्यात्म नहीं है तो हम मूल्य धारण नहीं कर पाएंगे। कई पेरेंट्स होते हैं उनके पिछले जीवन से संस्कार होते हैं, तो वो बच्चों को भी उनका ब्रोटअप ऐसा ही होता है, बच्चों को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, जरा भी कहीं पर गलती होती है उनको फौरन इशारा देते हैं। उनके पिछले संस्कार यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हमको अपने संस्कार और नेचर को ट्रांसफॉर्म अध्यात्म ज्ञान के द्वारा करना होगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा हम अपनी अंदर की शक्तियों को एनहांस करते हैं और मूल्यों को धारण करने की शक्ति हमारे अंदर आता है। जैसे आप देखते हैं किसी को कहते हैं प्यार करो, प्यार से रहो, आपस में प्यार से बोलो, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि आप एक लवफुल बीइंग हैं। जैसे मैंने ये फील किया, मैं इस फिजिकल बॉडी के अट्रैक्शन से बियॉन्ड अपने को फील करने लगी, तो मेरे अंदर एक प्यार की भावना जागृत मेरे अपने लिए हुई। पहले मुझे अपना रिलेशन अपने साथ अच्छा करना होगा, तभी मैं दूसरों के प्रति प्यार क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आपका अंदर में प्यार नहीं भर रहा है तो आप किसी को वेलकम भी करेंगे रूखा सूखा कर देंगे, या कोई प्लांट्स हैं उनको भी आप ऐसे ही रफ डफ रख देंगे, फेंक कर वस्तुओं को रख देंगे। अगर आपके मन में प्यार है तो आप किसी भी चीज को बड़े प्यार से, पोलाइटली और बड़े मैनर पूर्वक उसको रखेंगे। तो जब तक हमारे अंदर से वो मूल्य आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से नहीं निकलते हैं, तब तक हम मूल्यों की धारणा दूसरों को नहीं करा सकते हैं। तो ये मूल्य हमारे अंदर, हमारी जो कॉन्शियस एंटिटी है, चेतना है, उसके अंदर है। मूल्य कोई हमारे इस फिजिकल बॉडी को नहीं चाहिए धारण करने के लिए, लेकिन मूल्य हमारे अंदर में जो चेतना है उसके अंदर धारण करने की बात चल रही है। तो जब तक हम अपनी आत्मा को, चेतना को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम मूल्यों को धारण नहीं कर सकते और ना ही हम दूसरों को करा सकते हैं। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में मूल्यों की धारणा के साथ साथ अध्यात्म का भी समावेश होना बहुत बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भिन्न भिन्न कॉलेजेस के अंदर इस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं।
थैंक यू सिद्धेशली जी। अभी मैं वाइस चांसलर सर, जो अभी अभी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, भीमराव अम्बेडकर सर से, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, जानी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आज एक हमारा छोटा कंफ्यूजन है, एक प्रश्न है। स्टूडेंट को इवेल्युएशन का प्रेशर है, उसको अपनी कॉपियों में इतना लिखना भी है कि उसके 70-80 नंबर आ जाएं, वो पास भी हो जाएं। क्या हमारा इवेल्युएशन सिस्टम वैल्यूज को प्रमोट कर पा रहा है, या हम अपने इवेल्युएशन सिस्टम में थोड़ा और कैसे चेंज लाएं कि जो दौड़ मार्क्स के लिए आज है कि 2 नंबर और दे दो सर प्लीज, थोड़े ज्यादा आ जाएं, वो मार्क्स की दौड़ वैल्यूज की दौड़ में कन्वर्ट हो सके। सर जी, सर
ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर SB होसा मणि जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी, आदरणीय प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा जी, प्रो वाइस चांसलर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री BK सुदेश जी, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग दिल्ली, आमंत्रित सम्माननीय कुलपति महोदय जी, विद्वत महानुभाव, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, देवियों एवं सज्जनों, 2 दिन के इस सम्मेलन में आयोजकों ने मुझे यहां पर आने का अवसर दिया। मैं भाग्यशाली हूं, गर्व अनुभव करता हूं, गौरव अनुभव करता हूं, और साथ ही साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी महानुभावों को, परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं इस सफल आयोजन के लिए। मैं समझता हूं कि इस तरह का आयोजन, और वो भी वैल्यूज की जहां बात आती है, वैल्यूज पर बात करना व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति के लिए भी और किसी संस्था के लिए भी अपने आप में चुनौती होती है। और पिछले इतने सालों से यह संस्था वैल्यूज पर काम कर रही है और पूरे विश्व भर में एकमात्र इस तरह की अपने प्रकार की एक संस्था है जो कार्य कर रही है, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। बात आती है हम वैल्यूज की बात क्यों कर रहे हैं, बार बार वैल्यूज की बात, क्या कारण है? कल मैंने शुरुआत की थी, हम वैल्यूज की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम सब लोग विचलित हैं। जिसे नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, वह विद्यार्थी भी विचलित है, उसके माता पिता भी विचलित हैं। मुझे नौकरी मिल गई है, उसके बाद भी मैं भी विचलित हूं कि आगे मुझे क्या करना है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, दूसरों से मैं कैसे आगे बढ़ूं। हम सब लोग विचलित हैं। वैल्यूज की बात इसलिए करनी पड़ती है कि मार्ग पर हम जब जाते हैं, वो फिर कोई भी राज्य हो, भारत देश का, कल मैंने भारत देश के चरित्र की बात की थी, किसी भी राज्य के किसी भी राजमार्ग पर परिस्थिति एक जैसी है, ट्रक में सामान जा रहा है और पुलिस का कांस्टेबल, वो कोई भी हो, आप उसे व्यक्तिगत तौर पर न लें, कोई भी एक पुलिस कांस्टेबल उस ट्रक को रोकता है, ड्राइवर से बात करता है, ड्राइवर उसे,
दीदी प्लीज, दीदी माफी चाहता हूं प्लीज,
ड्राइवर जो है उस पुलिस कांस्टेबल को कुछ पैसे हाथ में थमा देता है और वो ट्रक आगे जाता है, और वो पुलिस कांस्टेबल आपके लिए जो खड़ा है, आपके लिए जो उसे कार्य करना है वह न करके इसी पूरे दिन में इसी कार्य में लगा रहता है, कितने ट्रक आए, कितने लोगों के पास से पैसे मुझे मिल रहे हैं। और यह चक्र आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी कार्यालय में देखेंगे, किसी भी अन्य जगह पर देखेंगे, हमें यह चीज देखने को मिलती है। मेडिकल से पढ़ा हुआ छात्र 20-25 लाख, 30 लाख, शायद इससे भी ज्यादा की सेल्फ फाइनेंस की फीस देने के बाद में वह छात्र डॉक्टर बनता है, आप उस डॉक्टर से क्या अपेक्षा रखते हैं, वैल्यूज की? वह डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद में यही सोचेगा, मैंने 25 लाख 30 लाख या अमुक रकम खर्च की है, मुझे इसे प्राप्त करनी है और किसी भी तरह प्राप्त करनी है। बात इसलिए हमें वैल्यूज की करनी पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी की करनी पड़ती है कि आप किसी भी जगह, हां आज थोड़ी सी कहीं आशा उम्मीद की किरण हमें दिखती है कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कहीं वातावरण वाइब्रेंसी कुछ ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है, सत्य की तरफ वैल्यूज की तरफ लग रहा है, ऐसा पॉलिटिक्स में भी यही, राजनीति में भी यही, ब्यूरोक्रेसी में भी यही, शिक्षा के क्षेत्र में भी यही। मोस्ट मैन एडी अबाउट हियर देयर ईट एंड ड्रिंक स्ट्राइविंग ब्लाइंडली अचीविंग नथिंग एंड देन दे डाई पेरिश। यह सिचुएशन है हमारी। तो क्या हम वैल्यूज की बात नहीं करेंगे? थोड़ी देर पहले सम्माननीय कुलपति जीओ की एक बैठक हुई थी, उसमें संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। बात थी कि क्या वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी के अभ्यासक्रम हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में शुरू नहीं किए जा सकते या किए जा सकते हैं। मैंने मेरा मंतव्य वहां पर नहीं दिया था, नहीं रखा था, मेरी बात नहीं रखी थी, मैं इस मंच से यह बात रख रहा हूं। कल मैंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एमओयू किया है कि हम हमारे विश्वविद्यालय में और हमारे 200 से भी ज्यादा जो सेंटर्स हैं उनके माध्यम से हायर एजुकेशन के जो हमारे छात्र हैं, फिर प्रमाण पत्र हो, डिप्लोमा हो,
या डिग्री का जो हमारा अभ्यासक्रम है उसमें वैल्यूज का यह अभ्यासक्रम हम ऐड करने जा रहे हैं। और मैंने कल मंच पर विराजमान महानुभावों को आश्वस्त भी किया था कि इस अभ्यासक्रम को हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। भारत देश में आप ऑब्जर्व करना, भारत देश में हर व्यक्ति चाहता है कि अनुशासन हो। मुझे कोई अनुशासित नहीं कर रहा है, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, मैं दिशाविहीन हूं। यदि मैं फॉरेन के किसी कंट्री में मैं वहां पर गया हूं और वहां का नियम है कि भी रास्ते चलते आपको कचरा नहीं डालना है, हम उस कचरे को वहां नहीं डालेंगे। और भारत देश के हम लोग हैं और भारत देश में हम कचरा गर्व से रास्ते पर डालते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ता है। हम वैल्यूज की बात क्यों ना करें। भारत देश की तासीर है कि यदि कोई पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा रहेगा तो हम शिस्तबद्ध चलेंगे। स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना नियम बनाएंगे और व्यक्ति वहां पर खड़ा रहेगा तो हम पहनेंगे। सीट बेल्ट हम लगाएंगे। हमें यह करना है, आपको करना है कहेंगे तो करेंगे हम लोग। मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि हमारे छात्र भी 12वीं कक्षा जो पास करके कॉलेज में आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, यदि उन्हें इस तरह की बात, हां मैं सहमत हूं, कल मैंने ये कहा था कि माता पिता पहले गुरुजन डे वन से, और मैंने तो यहां तक कहा था कि मां जब बच्चे को डे वन कंसीव करती है तब से शिक्षा शुरू होती है, वैल्यूज की शिक्षा उस दिन से शुरू होती है। हम प्राइमरी में वैल्यूज, घर में वैल्यूज, हायर सेकेंडरी में वैल्यूज, हम क्यों कॉलेज में उन बच्चों को वैल्यूज की शिक्षा नहीं दे सकते। नीति शास्त्र पढ़ाते समय, लॉ पढ़ाते समय आप याद करिए, हम हमारे बच्चे को, जो छात्र है लॉ का, जो छात्र है, क्या उसे नीति की बात हम नहीं कह सकते। आज आप सोचिए कि एक हमारे भारत देश का एक वकील किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए, खाली उपस्थित रहने के लिए, उस केस के लिए नहीं, उपस्थित रहने के लिए मुझे इतनी फीस मिलेगी तो मैं उपस्थित रहूंगा। इतनी फीस मतलब वो लैक्स में भी हो सकती है, करोड़ में भी है और है ऑन रिकॉर्ड, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। देने वाला इतनी फीस कहां से दे रहा है और लेने वाला इतनी फीस ले रहा है, क्या हमारा नीति शास्त्र, क्या हमारा लॉ, क्या हमारा कानून उस व्यक्ति को यह पढ़ा रहा है। डॉक्टर के सामने पेशेंट मर रहा है पर हमारा डॉक्टर विचलित नहीं होता है, यह अनुभव है हमारे। मैं वैल्यूज की जो डेफिनेशन है, जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अ वैल्यू इज ए बिलीफ, इट्स ए बिलीफ, अ मिशन और अ फिलॉसॉफी दैट इज मीनिंगफुल। एवरी इंडिविजुअल हैज ए कोर सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज। वैल्यूज कैन रेंज फ्रॉम कॉमन प्लेस सच एज द बिलीफ इन हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम एंड पंक्चुअलिटी, टू द मोर साइकोलॉजिकल सच एज सेल्फ रिलायंस, कंसर्न फॉर अदर्स एंड हार्मनी ऑफ पर्पस। साथ ही स्पिरिचुअलिटी की भी एक व्याख्या, द बेसिक मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दैट इट इज ए टर्म विच एनकम्पासेस एवरीथिंग दैट वी कांट सी डायरेक्टली विथ अवर आईज, directly perceived by the other senses and know our mere reason. Values, Hitler के भी values थे, महात्मा गांधी के भी values थे, पाकिस्तान के भी values हैं, भारत के भी values हैं, आतंकवादियों के भी values हैं। और भारत देश के सेना का एक हमारा सिपाही जो है, सोल्जर जो है, उसके भी वैल्यूज है। वैल्यूज की बात अलग अलग आती है, वैल्यूज एक फिलॉसॉफी है। वैल्यूज की हम बात करते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं? ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, पंक्चुअलिटी, एटीट्यूड, एक दिशा है। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, किसी भी सफलता की कुंजी का नाम है वैल्यू, चाबी जिसे कहते हैं, key to success, key to development, key to progress means values. हम values की बात क्यों ना करें? हमारे गुजराती में कहते हैं, जिस दिन हम जगे उस दिन से सुबह जाग्या त्यारती सवार. आज हमें मालूम चला है कि ब्रह्मा कुमारी में यह हो रहा है, उनके साथ में जुड़कर हम यह कर सकते हैं, तो आज जगे है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है. हम क्यों ना करें आज, हम क्यों ना वैल्यूज की बात करें, क्यों ना हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें. हिटलर की चोर जो है चोरी करने जाता है, उसके भी वैल्यूज होते हैं. वो भी कुछ अपने जो आराध्य देव हैं उनकी पूजा करके और फिर आगे बढ़ता है, तो वो वैल्यूज हुए. अब वैल्यूज कौन से हमें स्वीकार करने हैं, हमें सोचना है. यू टॉक टू योर ओन सेल्फ. हम लोग नहीं करते हैं. हम अगल बगल में लोग क्या कर रहे हैं, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं. मेरे हृदय में, गुजराती में फिर से मैं कहूंगा, मारा घटमा विराजता श्री नाथ जी. सब लोग समझते हैं हमारे हृदय में, हमारे अंदर ही हमारा भगवान है. हम उनसे बात नहीं करते हैं. गुजराती की फिर से मैं बात करता हूं. हमारा एक सुबह, जिसे हम सुबह हमारी दादी हमारी नानी छास बनाते समय उस भजन को गाया करती थी, जागने जादवा रे कृष्ण गोवालियो. कृष्ण भगवान की बात हर माँ उसको प्रभातिया कह के कहते हैं. हर माँ उस गीत को गाती है और लोग ऐसा समझते हैं कि मात्र और मात्र कृष्ण भगवान की बात है. वही बात हमारे विवेकानंद जी ने की, उठो जागो वाली बात. माँ अपने बेटे को जागृत कर रही है कि बेटा तू उठ, बेटी तू उठ, तुझे जो कार्य करना है उसे कर. आज यदि हमें कोई चीज मिलती है, ब्रह्मा कुमारीज का ऑर्गेनाइजेशन हमें यदि आज इस वैल्यूज की बात कहता है, हमें स्वीकारनी चाहिए. और जितना हमसे हो सकता है, जितना हमसे हो सकता है, हम इसे अपने छात्रों को दें, हमारे विद्यार्थियों को दें. कल मैंने कहा था, हमारा बेटा हमारी बेटी हमारे बच्चे ठोकर खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. हम उन्हें ठोकर क्यों खाने दें, हम उन्हें ठोकर क्यों खाने दें. याद करिए, सबको मालूम है, वह छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, हर दिन पेंसिल चौक रबर या कोई ना कोई छोटे छोटे दो तीन पैसे चार पैसे बच्चों के चुरा कर, अपने मित्रों के अपने क्लास में से चुरा कर घर ले जाता था. सबको मालूम है. उसकी मां ने कभी उसे मना नहीं किया. और एक दिन वह लड़का फांसी के तख्ते पर खड़ा है और वह याद कर रहा है. उसे पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मुझे मेरी मां से मिलना है. हम सब जानते हैं. याद कराता हूं आपको उन बच्चों की जिन्हें शिक्षक ने कहा, आज हमारा आखिरी दिन है शाला का, आप सब लोग अपने घर से दूध लेकर आएंगे, साथ में खीर पूरी मेरे आश्रम में इस शाला में हम लोग साथ में खाएंगे बनाकर. याद करिए क्या था. याद करिए, हर बच्चा उस दिन अपने लोटे में पानी भरकर लाया था. हम वैल्यूज की बात क्यों ना करें आज, हम स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों ना करें. एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपसे और मेरी बात पूरी करूंगा. वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी की बात करने के लिए हमें माइंडसेट करना जरूरी है. और अपने आप में हर टीचर, हर शिक्षक, मैं टीचर्स की बात करता हूं, मैं खुद टीचर हूं, आप याद तो करिए, शेक तो करिए अपने आप को, झकझोरिए कि हमें जो काम सौंपा हुआ है, छह घंटे सात घंटे आठ घंटे, वह तो आपको उसमें तो सरकार आपको पगार दे रही है. यू आर पेड फॉर दैट. आप उसके बाद में कितना कार्य करते हैं, दो घंटे तीन घंटे चार घंटे, रविवार को शनिवार को कितना कार्य करते हैं. आप बात तो करिए अपने आप से, समय तो निकालिए. आप साथ समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है. हर अच्छे कार्य को करने के लिए समय निकालना पड़ता है. और ये समय निकाला हुआ जो कार्य है, उसकी जो खुशी होती है, सफलता जो मिलती है, वो अपने आप में अलग होती है. सिरीन विल बी अवर डेज एंड ब्राइट. पवित्रता की बात कर रहा हूं. सिरीन विल बी अवर डेज एंड ब्राइट. हैप्पी विल अवर नेचर बी व्हेन लव इज एन अनएरिंग लाइट. जॉय इट्स ओन सिक्योरिटी. हमेशा हमें खुशी मिलेगी, हमेशा खुशी मिलेगी. सिक्योरिटी खुशी की है. सेट द टारगेट. आपको करना क्या है, सेट द टारगेट, अचीव इट, अटेन इट. सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
बहुत बहुत थैंक्स सर। अभी मैं एक प्रश्न के साथ हम सगुना मैम के पास जा रहे हैं और हमारा प्रश्न है, हमने मूल्यों की बात की तो कई बार सुना है कि मूल्य बाई बर्थ आते हैं जन्म के साथ, कई बार ये भी सुना है कि मूल्य परिवार के साथ आते हैं, ये भी हमने सुना है कि मूल्य समाज से प्राप्त होते हैं। जब सब कुछ मूल्य वहां से प्राप्त हो रहे हैं तो फिर एक एजुकेशन सिस्टम में अलग से मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए या हमारी सारी शिक्षा पद्धति मूल्यवान होनी चाहिए? इस प्रश्न के साथ हम जा रहे हैं सगुना मैम के साथ। क्या मूल्यों की शिक्षा सेपरेट होनी चाहिए या हमारी संपूर्ण शिक्षा पद्धति मूल्यवान होनी चाहिए, मूल्यों के साथ होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त क्या हम मूल्यवान केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाते पढ़ाते मूल्यों की परिभाषा हम साथ में दे सकते हैं या देर शुड बी अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ वैल्यूज? मैम,
थैंक यू मुकेश जी, आपने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया क्योंकि इस तरह के एक्सपर्ट्स पैनल में बैठने के लिए भी मेरा कोई आई डोंट डिजर्व इट, बट द वेरी फैक्ट दैट आई एम सिटिंग हियर इज दैट वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेरी पैशनेट अबाउट वैल्यू एजुकेशन एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट वैल्यूज अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट्स। सो द वेरी क्वेश्चन दैट यू हैव पुट टू मी इज अ सब्जेक्ट डियर टू मी। I'll try to answer it to the extent possible. As you asked me the question and as I was observing all the experts putting forth such fantastic ideas about value education and spirituality, I was just reminded of a small WhatsApp message that I received today. I'm sorry, I'll be mostly talking in English because I come from a place where we don't speak Hindi normally. But I have a love for Hindi, so I'll try to speak a little bit in Hindi in the middle. So the WhatsApp message that I received today was, my son got 1199% out of 1200 in his 12th exam from a friend of mine. I was surprised to see the message. Well, I was very happy to read it first. And then I was surprised because this friend of mine doesn't have a child who is in the age of writing a 12th standard exam. That you can understand from seeing the grey hairs. Only a grandson could be there for her, but my friend didn't have a child of that age. So I asked her, but I don't think you have a son or daughter of that age. How come you are sending me a message? And you know what she replied? I'm sorry. I just got it from somewhere and I forwarded it. That is exactly what we are all doing these days. We just keep forwarding whatever we hear and we don't even register it. When this panel discussion was started, Satyam pucha tha ki there are two children studying in the same class, but they finally end up with a different value system. How is it happening? The first answer that came to my mind about that was, are we internalizing the values? We can talk a lot about values. We read a lot and we can give long time lectures. But how much have we started internalizing? When I teach a child in a 40 minutes class or an 1 hour class, any subject, how much is he taking it in? Our education system today is one which is for generation of marks. So Mr. Jani was talking about it. I could hear the pain in his heart as to why we should not be imposing or introducing value education when the child is more concerned about the marks and his future, not just the child, but the parents and the entire society. Why is it happening? I'm reminded of a small system that UNESCO has brought in. None less than UNESCO. they say that there are four pillars to education. The education, the building of education stands on four pillars. The four pillars are, first is learning to know. The second is learning to do. The third is learning to live together. And the fourth is learning to be. This learning to know, जानने के लिए सीखना, and this learning to do, कुछ करने के लिए सीखना, ये दोनों तो हमारे education system में वैसे it is already ingrained in that. We all know that our the number of the bulky books that our children carry nowadays, maybe not the books but the internet access for knowing a lot of things. We know the education system makes them, forces them to learn to know. And then to do also is there. We do a lot of experiments and a lot of skill development programs are there. Right from, you know, like a mechanical engineering, a doctor, a lawyer, everybody is learning to do something. But how much of importance are we giving to this learning to be together? And learning to be living together. In this competitive world, our children are forced to look about themselves. How far can I run? When will I reach the goal? And in that process, I want to brush aside everybody who comes from my side, who is running with me. I'm reminded of a story when in a school, the children were doing a running race. They were all running and suddenly one child fell down. The other children were running fast and one child stopped and looked back. This child was crying. He has fallen down. The child ran back. Everybody was shouting, "Why are you running back? You are already near the goal. Run ahead." The child didn't listen. He went back. He picked up the child who had fallen down. And then held his hand and they started both running together. They didn't reach the goal first, but they made a great impression in the minds of all the spectators and the children around. But how much do our children today have that feeling? How many of our children have that feeling? So this learning to live together, our education system has not given much of importance to that. I'm not blaming, but we are so hard pressed for time. We are so hard pressed for resources that we are not able to give importance to that learning to live together. If this learning to live together itself is not there, where is the question of that learning to be? Where is the child having time for himself? To see who he is. Sister Sudesh was talking about the spirituality angle of education. Where is that in our current education system? The child doesn't have a moment to spare to think about himself. He has to learn, do, work hard and get marks, get certificates, get qualified, get a job. And like yesterday when they were saying, and then live happily. But how about living happily right now and then doing all that? Getting the marks, getting the qualifications and getting a job, getting that new car so that he will be able to enjoy all that. So that B also is not there much. So UNESCO has suggested that these four pillars should be taken care of. So our idea is that the education system should include all these four pillars. The two pillars are already taken care of, but how about taking care of the remaining two pillars also, not ignoring the pressures of time and other things? How to include? So Ms. Mukesh Bhai has asked me, is it possible? I tell you, it is possible. We have been experimenting with this methodology in the schools where along with science, along with maths, along with your languages, children can still be brought in, the values. Because these values, as everybody was pointing out, they are not anything somewhere outside. They are all within inside, inside every child. We are all born with all that. We are all born with that spirituality, the source, the soul, the spirit that is within us. Unfortunately, what has happened is, in the process of our moving ahead, running ahead against the time, we have forgotten all that. That has taken a lower place. Like somebody yesterday was talking about our conscious mind and subconscious mind. All these things have gone down deeper into the subconscious mind. We keep operating from the conscious mind level. So in the subconscious mind, that connection with the spirit, the connection with the source or the father, whatever way we call it, that connection, it is lying deep. All that we need to do is just clean it up like a mirror that gets dusted after a long time if you haven't maintained it. We are all reflections like that. You look at the mirror, you will be seeing a beautiful picture of yours, image of yours. 10 days, you haven't cleaned the mirror up. The 11th day, you go and look at your face. You are going to see a blurred face of yours. But are you that blurred person? No. Internally, you are that pristine, beautiful, loving person that was born. The first cry you gave out was out of that. What has happened is all the inputs that we have been gathering all these days have gone on that and formed sediments. And all we need to do is just clean it up. And then the light within is going to shine. So in the education, and that is, it has to start from there. Now, there was a question that how are we going to deal with the issues that our university students, college students are facing, the drug addiction, so many other things. We don't even have to talk about. I believe in talking only sakaratmak words, positive words. So I won't even bring in those issues, but everybody knows what are those issues. So there was a question, how do we handle them? The root cause is that we have not handled them in the beginning. When we have not given a proper stick for the creeper to climb up, when it has become a tree, it has become a bent tree. So it's very unfortunate. But that is not the answer to the question. Yes, we have ignored it, but we can still bring it out. Maybe the job will be a little difficult. At the age of 6, what you can tell the child will be very, very easy, rather than telling a child who is at 16, because he has already gathered a lot of inputs inside. A lot of dust has been formed. So it takes time to clean it up. But then, sometime it has to start. So we can start it at the 16th age also. Or we could have started it at sixth year also. But somewhere when we start, the dust gets cleaned up. And then the child can really go up. There is one question that has come. I will also look into that. I didn't see it first. I should have seen it. So I'll just close it with that. So the question is that within the classroom, along with the subjects, when the teacher sees a value in any one of them, you can very easily see values on all these things. Just bring out a short incident that has come to your mind from a real life, from the leader's life. Just tell that child that story and just ask him, what is your opinion about it? He will take it inside and go home with that after internalizing that. Instead of giving him a lecture, if I just put the question to him and he takes it in, he is going to live with that. So that is one way where we can bring in the values as well as spirituality into education. Thank you very much.
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्स मैम. अभी हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन राउंड जो करेंगे, बात थोड़े थोड़े समय में शॉर्ट में आंसर देकर के अब शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड में. एक क्वेश्चन है, क्या वैल्यूज रेफरेंस की मोहताज है? जो एक चीज मेरे लिए वैल्यू है, क्या दूसरे के लिए डी वैल्यू या एंटी वैल्यू हो सकती है? इस बारे में आप कोई भी आंसर कर सकते हैं. यू वुड लाइक टू आंसर प्लीज सर.
I'll answer that question and just add one or two points. You know, values will be different from culture to culture. There is no doubt about it. But there is something called universal values, which cuts across the cultural differences. Right? The United Nations organization, the great organization which was formed after World War II, subsequently there was a conference and then they declared universal human rights. But universal human values are equally important. And there is no consensus around the world on universal human values, which is the call of the day. Someday somebody should, you know, start, and there should be a discussion, there should be a declaration in the same spirit of universal declaration of human rights. Number two, like yesterday, Ved Prakashi was talking about duties. Now, the students read fundamental rights, but when it comes to duties, the emphasis on duty is much less. So those who claim rights completely forget about their duties. So that is why these values as well as rights have to go side by side. Number two, I wanted to say that now we are talking about the role of spirituality and values in the school. In my view, it should not begin in the school curricula. The beginning should be made in teacher training. Why? Because values are not the thing that should be read out in the class and you ask a question and then you get the answer, give the marks. Values have to be practiced. Unless the teachers imbibe good values, practice them in real life and then try to impart to the students the universal values, it will be completely meaningless. Just like the role of the parents are so important because the students at every level, whether primary or secondary or higher education, teachers are their role models. Unless the role models are imbibed with good values, it will be on the piece of paper and just for, you know, question answer and giving marks and all that. Third point that I keep telling all my students in every batches, maybe some of you do that, but let me share this. I tell my students that one of the important things that you should learn is not to be scared of failing in the examination. Fail. There is a beautiful expansion of fail. F-A-I-L. That is first attempt in learning. Because most of the depression, anger, and other kinds of frustration come out of failing in something, whether games and sports or even in the examination. So this idea must go into that. You keep trying, keep struggling, don't get stuck simply because you failed this time. That is very, very important. Simultaneously, we should say, success is never final. Success is temporary. Ek success ke baad dusra aane wala hai. So don't be too happy, too excited simply because you succeeded once and kaam khatam ho gaya. Nahi. So this success and failure ka jo values hai, in my view these are universal values because the resources are limited and the number of people are large. Imagine how many people write examination, how many pass, how many people apply for a job, how many get. So this kind of failures are part of life. So how to keep our people, our students, strong despite inadequacies, despite failure, is actually very, very important for all of us. And here lies the role of the teachers, and not role in education, role of the teachers in imparting values to the students. Thank you.
Thank you, sir. बहुत सुंदर बात आपने कही कि वैल्यूज रेफरेंशियल होती हैं क्या, और बहुत सुंदर बात आपने की कि वैल्यूज जो सर्वकालिक हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, वो किसी रेफरेंस का मोहताज नहीं होती. लेकिन कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल टेम्पोरल वैल्यूज हुई, अल्पकालिक कुछ मूल्य हैं. डॉलर की कीमत आज हो सकता है 67 रुपए हो, 65 रुपए हो, कल 63 हो जाएगी, या कहीं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, वो रेफरेंस की मोहताज हैं, टाइम रेफरेंस के रूप में है. लेकिन यूनिवर्सल वैल्यूज एक के लिए वैल्यू और दूसरे के लिए एंटी वैल्यूज नहीं हो सकती. एंड मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि ब्रह्मा कुमारी इसमें एक चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, बहुत वैल्यू एजुकेशन की किताबों में बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है एंड इट्स वन ऑफ द वंडरफुल चैप्टर ऑफ वैल्यूज. अभी एक प्रश्न है, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो चिट्ठी में लिख के दे सकते हैं. अभी हम एक एक करके उन ऑडियंस के प्रश्नों को भी लेंगे. स्टूडेंट के सामने एथिकल डायलेमा आता है. बहुत से बार ऐसा होता है कि ये करें या ये करें. इन केस ऑफ दैट एथिकल डायलेमा व्हाट ही शुड डू. जानी सर इस बारे में शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं.
सर रेफरेंस जो है आपने कहा, हमारे छात्र जो है डिलेमा में रहते हैं. डिलेमा का कारण यह है, मैडम ने भी अभी जो बात रखी थी कि ड्रग्स और एडिक्शन और इस तरह की जो बातें हैं, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर मैं मेरी बात रख रहा हूं. मैंने मंच से भी जो बात की कि समय निकालने की जो बात है, हम लोग वर्गखंड में छात्रों को पढ़ाने के बाद में छात्र को भूल जाते हैं. मेरा अनुभव ऐसा रहा है, एनसीसी का मैं कैडेट था, एनसीसी का ऑफिसर रहा और एनसीसी के कारण विद्यार्थियों के साथ में रहने का मुझे काफी समय मिला, मौका मिला. एक अनुभव शेयर करता हूं आपसे. स्ट्रिक्ट टीचर या स्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात मेरे साथ में लगी हुई थी. छात्रों का ग्रुप एनसीसी के कैंप में खड़ा था और दूर से ग्रुप के अंदर एक छात्र जो है उसके हाथ में सिगरेट थी. मैं उसी तरफ जा रहा था, मुझे दिखा कि वो सिगरेट जो थी उस बच्चे ने पीछे लेकर अपनी उंगली से उस सिगरेट की जो लौ है जल रही थी उसको उसने बुझा दिया था. मैं उस तरफ उस छात्र के पास में नहीं गया. मैंने उसे ताड़ा नहीं, ना ही उधर गया, मैं वहां से निकल गया. उसके बाद में वह छात्र सामने से आया और उसने मेरे साथ में बात की कि सर आप आ रहे थे फिर इधर आए नहीं. उसे मालूम चल गया कि सर ने देखा है पर मैं वहां गया नहीं, ना मैंने उससे बात की. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने छात्रों के साथ में बात करनी पड़ेगी. हम लोग वर्गखंड में तो मात्र जो पाठ्यक्रम है या जो पढ़ाने की बात है वो उसे पढ़ा रहे हैं, पर उसके साथ में जो हमारा लगाव, एक साथ एनसीसी के 1000 छात्र खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं इंटीमेट होके, पेरेंट्स की तरह, बड़े भाई की तरह, माता पिता की तरह. वह बच्चा हमारे साथ में सब कुछ शेयर करता है, सब अपनी बातें करता है. देखिए काफी परिवर्तन आएगा. मैंने मेरी बात कही कि एक ही दिन में निर्माण कार्य जो है वो कभी एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है. निर्माण कार्य की हम शुरुआत तो करें.
बहुत अच्छी बात आपने कही कि कानून बनाने से, डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन बनाने से या दंडात्मक विधियां अपनाना हर बार वैल्यूज को प्रमोट करने का माध्यम नहीं हो सकती. देयर शुड बी वेरी मोटिवेशनल वेज टू अडॉप्ट द वैल्यूज. दंडात्मक विधियां सदा क्या बहुत ही कम समय, बहुत ही कम बातें होती होंगी शायद जब सफल होता होगा. आज जैसा सर ने एग्जाम्पल बताया कि वो वहां नहीं गए क्योंकि सर ने अब भी ये बात रखी कि आंखों की शर्म तो है आज स्टूडेंट में. शायद वो जाके वहां उसको ताड़ देते और झाड़ देते तो वो शायद आंखों की शर्म भी ना बचती. फिर वो अभी तक शायद छुप के वो काम कर रहा था, अब शायद उसको छुपने की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो एक सुदेश बहन जी से और सर से मेरा प्रश्न है, आप दोनों इस पर अपनी अपनी राय रखिएगा कि कौन से 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण मूल्य हैं अध्यात्म की दृष्टि से. सुदेश बहन जी आप इसी राय को अध्यात्म की दृष्टि से रखिएगा कि अध्यात्म की दृष्टि से 3 ऐसे कौन से मूल्य हैं जो हर स्टूडेंट में या हर टीचर में होने चाहिए. पहले टीचर में होने चाहिए ये बात करें. और यही प्रश्न एक एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सर आपके लिए भी.
वैल्यूज का भी एक कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी चीज वैल्यू है कौन सी नहीं है. तो आप देखिएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी एक वैल्यू में ही आता है कि अगर हमारा दूसरों के प्रति नजरिया पॉजिटिव रहता है तो हम स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकते हैं. सपोज कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है तो हम उसको बकअप करें, उसको कोऑपरेट करें, तो वहां पर उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ना कि ये सोचें ये तो है ही ऐसा, हमेशा ऐसा, उसकी अचीवमेंट्स ऐसी ही रहती हैं. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड उसको काफी आगे ले जा सकता है. और सेकेंड, मैं समझती हूँ कि टीचर्स के अंदर एक स्टूडेंट्स के प्रति फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए. शिक्षक ये ना समझें कि मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, लर्नेड हूँ, और बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये कैसे प्रश्न उन्होंने पूछ लिए, लेकिन एकदम मैं उनके सामने इंस्ट्रूमेंट हूँ, एजुकेशन का मैं एक सोर्स हूँ, मैं उनको कुछ ना कुछ विशेष इस विषय में जब तक करा नहीं लूंगा, उनके मन में जब तक ये बात आ नहीं जाएगी कि वाकई में ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया है, तब तक मुझे क्लास से निकलना राइट नहीं बनता है. तो ये हमारे अंदर में होना चाहिए कि स्टूडेंट्स मुझसे कुछ सीखें, ना कि मैं अपना वहां पर टॉपिक या जो भी है लेसन पढ़ा करके निकल जाऊं और उसका आउटपुट कुछ भी ना हो. तो ये भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, ये भी एक वैल्यू में ही आता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप में. और थर्ड आता है लव, प्यार. सभी के प्रति अगर हम एक प्यार का एटीट्यूड रख करके चलते हैं तो ये वैल्यू बच्चों को सीखने के लिए बहुत मदद करती है. अगर आप थोड़ा सा गुस्से से बोलते हैं और बहुत ऑफिशियल रीति से स्टूडेंट्स के सामने रहते हैं तो लव वैल्यू जो है वो ब्लॉक हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू जो है वो काम करने लगती है. बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चे आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे. तो नेगेटिविटी हमारे अंदर की दूसरों की नेगेटिविटी को खींचती है. तो हमारे अंदर थर्ड ये वैल्यू होनी चाहिए. और मैं समझती हूँ इन सभी वैल्यूज का जो सोर्स है, मेरा निजी अनुभव है, जब हम ये फील करते हैं कि मैं ये कार्ब नहीं हूँ, मैं इसके अंदर एक पोटेंशियल एंटिटी हूँ, कॉन्शियस एंटिटी हूँ, चेतना हूँ, शक्ति हूँ, जिसमें ही वैल्यूज की बात की जा रही है, शरीर में कोई वैल्यूज की बात नहीं की जा रही है. तो जब मैं ये फील करती हूँ कि मैं एक कॉन्शियस एंटिटी हूँ, मैं एक लवफुल एंटिटी हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उस समय मुझे गुस्सा करने का राइट नहीं बनता है, क्योंकि ये सब भी एक कॉन्शियस एंटिटी है. तो जब आत्मा आत्मा से बात कर रही है तो गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है. तो ये कार्ब जब हम पहन लेते हैं, मैं टीचर हूँ और वो स्टूडेंट है, तो भी इस बीच में हमारे अंदर ईगो आने लगती है. तो जैसे इस पे एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही थी कि एक आइस से किसी ने पूछा, भाई तुम हमेशा इतनी ठंडी क्यों रहती हो? तो उसने कहा, मैं ठंडी ना रहूं तो और क्या करूं, क्योंकि मेरा अतीत भी पानी है और अंत भी पानी है, तो मैं ठंडी तो रहूंगी, बीच में घमंड करने से क्या फायदा. तो हम समझते हैं कि हम मनुष्यों के अंदर जो ईगो आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है रोल प्ले करते करते, और वैल्यूज किनारे हो जाती हैं. तो हमको भी इससे ये लेसन लेना चाहिए कि मनुष्य का अतीत क्या है. खाली हाथ आए थे और जाएंगे कैसे? खाली हाथ. तो बीच में हमें ये नेगेटिव एनर्जी दूसरों को देने का राइट नहीं बनता है. तो ये हमारी वैल्यूज जो है इस रिलेशनशिप में होना बहुत जरूरी है.
I want to add certain things regarding the question which was asked. The question was regarding the basic three values in the education. Being a teacher, we have to answer for that. Other than the values that has been introduced by Sudesh Bhenji, I think that honesty is the base for a teacher and student relation. And the teacher's role as a role model for a student, that is, you should be very honest to your profession. There should be honesty in the relations and honesty in your commitment of works. Truth is the second. We should not avoid anything which is real and truth. because other things are related, honesty, truth, and becoming a role model for a student by following the duties which are assigned to him, yourself, are very important. And I think that these are the basic values in the education. Thank you very much.
I would just like to add one more point, which we have been kind of practicing, because I've seen that children, students, keep their ears shut, but they keep their eyes open. So normally it has been observed that whatever we keep telling them, they are not going to listen. But what we are, they are going to see and imbibe. Like Dr. Jani was mentioning, how the student covered the cigarette butt when he saw him. That's the respect that he has for the professor, who has been an example, living example. So as a teacher, as a value teacher, whenever I go and stand in front of the children, I've been trying to kind of, am I following what I have been telling the children? We are all in the process of a spiritual sadhana. We are all trying to live up to some values in us. Many times we all err, but then how much have we tried? When I go and stand in front of a child, if I'm going to talk about honesty, have I practiced it a little bit at least? If I'm honest to myself, then the child gets the message. So lead by example and be the change that you want to see in them has been a principle for in the value education. Thank you.
तीन बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हैं. समय की मर्यादा है, एक 30-30 सेकेंड्स में हम इनके आंसर्स को मैनेज करेंगे. बहुत ही सुंदर हैं तीनों प्रश्न. पहला प्रश्न है, इज इवोल्यूशन सिस्टम इज वैल्यू बेस्ड इन द यूनिवर्सिटीज? इफ नॉट, व्हाट इज द रेमेडी? वाइस चांसलर्स में से, तीनों वाइस चांसलर्स से कोई भी आंसर करें. इन्होंने वाइस चांसलर्स की तरफ क्वेश्चन भेजा है, क्या यूनिवर्सिटीज का इवोल्यूशन सिस्टम वैल्यू बेस्ड है? यदि नहीं तो रेमेडी क्या है? बहुत शॉर्ट में आंसर.
आई थिंक इट इज वैल्यूएशन सिस्टम. आई कैन आउटराइटली से हियर दैट द वैल्यूएशन सिस्टम इज नॉट वैल्यू बेस्ड. इट इज मैकेनाइज्ड एंड इट इज द ड्रॉबैक इन द formal system of education. We have made it mechanized and understanding part is very less. It is for selecting the students. It is not for educating the system. It is not enlightening the system. It is isolating the people, students, which are required for running the system. So this is my answer to your question in brief.
एंड हाँ, ये तीनों क्वेश्चन के बाद में एक बार आप ऐड कीजिएगा. अच्छा, प्लीज प्लीज गो एड
एंड आंसर्स आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड मोस्ट ऑफ देम एंड देयर सब्जेक्टिविटी कम्स इन व्हेन द टीचर्स मार्क इट. सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज देयर बिकॉज़ टीचर्स गो बाय देयर ओन परसेप्शन व्हेन दे मार्क द पेपर. सो ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, दैट्स मिक्स.
Madam, this is by and large answer. This is by and large answer.
Objective and subjective both are generally in question papers में दोनों चीजें होती ही हैं. अच्छा, एक अगला question एक और बहुत अच्छा सुंदर question है. Nowadays there is a flood of knowledge. दुनिया में ज्ञान इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है. There is so many things available on single touch. एक वन टच के ऊपर आप गूगल के ऊपर दुनिया की सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं. हाउ द स्टूडेंट्स गेट टू नो व्हाट टू चूज? एक विद्यार्थी कैसे पता करे व्हाट टू चूज? इट्स बहुत सुंदर क्वेश्चन है. आप
स्व को पहचानने की बात है. मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं? हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं. मुझे क्या करना है? मैं जिस स्थान पर हूं उससे 20% आगे बढ़ने की बात. आज ही मेरी मुट्ठी में पूरी दुनिया ले लेनी है. आज ही मुझे राष्ट्रपति बनना है. आज ही मुझे प्रधानमंत्री बनना है. आज ही मुझे मल्टी मिलियनर बनना है.
कल्पना करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज खूब है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में क्या वर्थ है, मेरे में क्या कैलिबर है, मेरे में क्या कैपेसिटी है, कितना आगे बढ़ सकता हूं, स्व को निर्णय लेना होगा।
इसके बारे में कल थोड़ा सा एक हिंट मिला था, इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन हर जगह मिलता है, मगर गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर ऐसे होता तो करेस्पोंडेंस कोर्स में स्विमिंग भी सीख लेते लोग। तो इसीलिए क्लासरूम टीचिंग, फ्रंट टू फ्रंट टीचिंग, द ह्यूमन टच विद द स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। मशीन्स का अपना लिमिटेशन होता है।
बहुत सुंदर प्रश्न और उतना ही सुंदर आंसर। अगला प्रश्न है, वो भी बहुत खूबसूरत है। हाउ डू वन स्टूडेंट गेट मैनेज फॉर बीइंग देन डूइंग। और जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, बहुत, मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, हाउ डू वन स्टूडेंट गेट मैनेज फॉर बीइंग देन डूइंग। देह अभिमान से स्वाभिमान की तरफ कैसे जाए। हाउ डू वन स्टूडेंट गेट मैनेज फॉर बीइंग देन डूइंग। करने वाला मैं नहीं, करने वाली बीइंग यानी कि आत्मा है। एक स्टूडेंट कैसे ये बात अपने जीवन में मैनेज करे, ही इज अ बीइंग देन डूइंग। जी प्लीज।
इफ यू गो डीप इनटू फिलॉसफी, थिंकिंग एंड डूइंग इज वन थिंग, बींग एंड बिकमिंग इज वन थिंग। एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अगर आप देखेंगे, पूरे दुनिया को, पूरे इंडिविजुअल को, खुद को एनालाइज करेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बींग एंड बिकमिंग, नॉट थिंकिंग एंड डूइंग। दिस व्हाट द जेन फिलॉसफी इज ऑल अबाउट। एंड इफ यू सी एट अनदर लेवल, मैं एक उदाहरण ही दे देता हूं। एक स्टूडेंट जाता है जेन मास्टर के पास, बोलता है, मास्टर फॉर लास्ट 30 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग जेन, बट मैंने सुना है यू आर सच ए ग्रेट टीचर, आई वॉन्ट टू लर्न। तो मास्टर बोलता है $30,000 देना पड़ेगा। $30,000 क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक स्टूडेंट आता है, फिर बोलता है, मास्टर मुझे जैन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ तो सिखा दीजिए, तो मैं फ्री में सिखा दूंगा। तो ये बोलता है, उसको कुछ नहीं मालूम, फ्री में, मैं 30 साल प्रैक्टिस कर चुका हूं, मुझे $30,000 वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग में कचरा भरा हुआ है, यू आर नॉट ओपन टू एनी सजेस्टन, राइट? So that is why if you think in terms of philosophy that will be applicable being and becoming, but at the mundane level it is thinking and doing.
बहुत बहुत धन्यवाद आज इतने सुंदर प्रश्नों पूछने के लिए। ऑडियंस की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रश्न आए और इतना सुंदर आंसर यहां दिया गया। अब हम अपने मूर्धन्य मंच को धन्यवाद देंगे। अब धन्यवाद के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि कुछ सम्मानित करेंगे हम। आइए, ब्रह्मा कुमारी इस बहनों को आमंत्रित करते हैं। बस अगले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सिर्फ 3 से 5 मिनट में हम इस समाप्त करेंगे। आप लोग यहीं बैठेंगे। ब्रह्मा कुमारी इसकी एक परंपरा है कि किसी भी प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले 3 मिनट का एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, अभी आप उस गीत को सुन के जाइएगा। एंड वो गीत भी पूरा वैल्यूज, ज्यादातर वैल्यू बेस्ड गीत है, उससे भी हर गीत से कुछ न कुछ वैल्यूज निकल के आती है। तो मैं हरीश शुक्ला भाई जी और सुदेश बहन जी को अनुरोध करता हूं। वाइस चांसलर साहब का अभिनंदन करते हुए शाल ओढ़ाकर, प्रोफेसर नामदेव वाइस चांसलर सर का अभिनंदन करते हुए, प्रोफेसर जानी आईएस